नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
ये जिंदगी वीरान है, यीशु नाम के
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, इन दिनों हम लुकार्ची सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने यीशु के पकड़वाए जाने और उसे उस पर दोष लगाए जाने के बारे में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 23 अध्याय के 44 पद से अध्ययन को आरम्भ करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी आत्मिक बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को सुने, अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, तंगी मुसीबत हैं, बीमारी में हैं। प्रभु, आप उनके साथ हो, उनकी सहायता करें, उन्हें उत्साहित करें ताकि इस वचन के द्वारा वे आप पर भरोसा कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इसराइल के धर्म गुरुओं ने अंततः यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिया और यही नहीं, वे उसका ठट्ठा भी कर रहे थे। परंतु वहां एक मनुष्य था जिसने यह जान लिया था कि यीशु वास्तव में राजा है और उसने यीशु से निवेदन किया कि उसे वह अपने राज्य में स्मरण करे। यीशु ने देर नहीं की, तुरंत ही उसे अपने साथ ले गया। समय समाप्त हो जाने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए थे, अतः आज हम देखेंगे कि जैसे यीशु ने कहा था कि वह अपनी आत्मा अपनी इच्छा से त्यागेगा, उसने वैसा ही किया। हम लूका 23 अध्याय उसके 44 पद में पढ़ते हैं, और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा यीशु के जीवन का प्रतीक था। ज्यों ही यीशु ने अपनी आत्मा देह से मुक्त की, त्यों ही मंदिर का पर्दा, जो बहुत मोटा था और परमेश्वर की उपस्थिति में आने में बाधक था, फट गया। अब परमेश्वर के पास आने का मार्ग हमारे लिए खुल गया था। हम लूका 23 उसके 46 पद में पढ़ते हैं, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मित्रों, स्मरण रखें कि यह वृतांत एक डॉक्टर द्वारा लिखा जा रहा है जिसने अनेक लोगों को मरते हुए देखा था। वह जानता था कि लोग कैसे मरते हैं। मनुष्य के प्राण निकलते समय जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है तब उसकी आत्मा निकलने के लिए संघर्ष करती है। वे दो अपराधी जो यीशु के पास क्रूस पर थे, वे भी ऐसे ही मरे थे, परंतु यीशु की आत्मा में अंतर था। उसने अपनी आत्मा त्याग दी। ध्यान दे उन शब्दों पर जो उसने कहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका लिखता है कि उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, और यूहन्ना लिखता है कि वह विजय की पुकार थी। सामान्यतः मरने वाले ऊंची आवाज में पुकार नहीं सकते हैं। हम लूका 23 उसके 47 पद में आगे पढ़ते हैं, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। उस सूबेदार को यीशु के क्रूसीकरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उसने असामान्य वातावरण देखा और वह समझ गया कि यीशु एक धर्मी जन था। अन्य सुसमाचार लेखकों ने लिखा है कि उस सूबेदार ने अंगीकार किया, अर्थात स्वीकार किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। मैं समझता हूं कि उसका यह अंगीकार उसे कलीसिया की सदस्यता नहीं देगा, परंतु हम उसे उस स्थिति में देखें जिसमें वह था। उसे यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कुछ नहीं पता था। वह यहूदी भी नहीं था और धर्म का ज्ञान भी नहीं रखता था। वह गहन अंधकार में था अतः उसका अंगीकार इससे अधिक क्या हो सकता था। हम लूका 23 उसके 48 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। यीशु की मृत्यु पर भयावह वातावरण उत्पन्न हो गया था। किसी भी सुसमाचार लेखक ने यीशु की मृत्यु का वर्णन विस्तार से नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र आत्मा ने उस भयानक घटना पर पर्दा डाला है, क्योंकि उसे देखना असहनीय था। यह भी गतसमनी के समान ही था। हम केवल दूर ही दूर से देख पाते हैं। हम केवल यही विश्वास रखें कि वह हमारे लिए और हमारे ही पापों के लिए मरा। हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 49 पद में पढ़ते हैं, और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। यीशु की लोथ अरमतिया के यूसुफ ने अपनी कब्र में रखी। पौलुस कुरिन्थ की कलिसिया को अपने प्रथम पत्र में लिखता है 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मित्रों, ये सुसमाचार की सच्चाई है। इसका अर्थ आपके लिए क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपके लिए मरा? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसके साथ आपके पाप भी सदा के लिए गाड़े गए? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह फिर जी उठा और आप उसके साथ जी उठे हैं? यही विश्वास हमें मसीह में ले आता है, अर्थात परमेश्वर हमें मसीह में देखता है, क्योंकि उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन गई है। आपके और मेरे पास यही हमारा सर्वस्व है जिसका हम गौरव करते हैं, अर्थात घमंड करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 50 पद में लिखा हुआ है, और देखो यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। यहां पर ध्यान दीजिए, अरमतिया का यूसुफ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह महासभा का सदस्य भी था। उसका प्रभाव बहुत था। यीशु के लिए खड़ा होते समय वह अकेला ही था। हम लूका 23 अध्याय उसके 51 पद में पढ़ते हैं, और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। यद्यपि वह महासभा का सदस्य था, वह यीशु के बारे में निर्णय लेते समय विपक्ष में था, क्योंकि लिखा है कि महासभा का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं था। वह धर्मी एवं भक्त जन था। यीशु से आमना सामना होने के कारण वह उसके पक्ष में था, जबकि उस समय यीशु में विश्वासी सामने आने से डर गए थे, जैसे यीशु के शिष्य भाग खड़े हुए थे। क्रूसीकरण के समय शिष्य छिप गए थे, और यह व्यक्ति जिसका नाम अब तक सुना नहीं गया था खुलकर सामने आया। यूसुफ और निकोदिमुस दो ही जन थे जिन्होंने यीशु में अपनी आस्था का प्रकट प्रदर्शन किया। निकोदिमस ने यूसुफ के साथ यीशु की मृतक देह को कब्र में रखा। हम आगे पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 52 पद में, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली। मित्रों, यहां पर हम आगे देखते हैं कि यूसुफ का विश्वास अब सबके सामने प्रकट होता है। उसकी पहुंच पिलातुस तक थी, अतः उसने यीशु की मृतक देह उससे मांगी और अपने कब्र में रखने की बात कही। हम लूका 23 अध्याय उसके 53 पद में पढ़ते हैं, और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी, और उसमें कोई कभी न रखा गया था। आज एक प्रश्न उठता है, यीशु की कब्र कहाँ है? दो स्थान हैं जिन्हें यीशु की कब्र कहा जाता है। एक तो वह स्थान जहां आज कैथोलिक आराधनालय बना हुआ है, और दूसरा वह स्थान शहरपनाह के बाहर है। परंतु मेरे विचार में ये दोनों स्थान यीशु की कब्र नहीं है, क्योंकि उस समय मसीह और विश्वासियों का विरोध बहुत अधिक था। इस कारण न तो यीशु का कोई स्मरण रहने दिया और न ही कोई अवशेष। इसके अतिरिक्त रोमी राजा तीतुस की सेना ने यरूशलेम को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया था। केवल वाटिका का मकबरा, जो आज पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, वह किसी प्रकार बच गया। परंतु वह यीशु की कब्र नहीं है। इसमें शक नहीं कि यीशु की कब्र वहीं कहीं थी। परमेश्वर ऐसी कोई वस्तु रहने नहीं देगा जिसकी लोग पूजा करने लगे और उसे यीशु से अधिक महत्व दें। जब हम वहां की सैर करते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, तब हमारे दिल में और हमारे दल में जो लोग वहां होते हैं, स्त्री या पुरुष, घुटने टेक कर उसे स्पर्श करते हैं, अर्थात फर्श को चूमते हैं और ऊंची आवाज में विलाप भी करते हैं। यदि वह यीशु की कब्र भी हो तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। हमें तो जीवित यीशु मसीह की उपासना करना है जो आज परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है। हम लुकारचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 54 और 55 पद में आगे पढ़ते हैं। वह तैयारी का दिन था और सप्त का दिन आरंभ होने पर था, और इन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। भक्त स्त्रियों का यह समूह जो यीशु और उसके शिष्यों की सेवा करता था उसके साथ अंत समय तक था। अब उसकी मृत्यु के दिन के विषय में क्यों विवाद करें? बाइबल में तो स्पष्ट नहीं है, और मुख्य बात यह है कि वह हमारे पापों के लिए मरा। परंतु मेरी समझ तो आता है वह यह है कि बाइबल में लिखा है कि सप्त का दिन आरंभ हो गया था, अतः उसका मरण दिवस शुक्रवार का दिन था। यीशु का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। निकोदिमुस और यीशु ने उसकी मृतक देह को मलमल के कपड़े में लपेट कर रख दी थी। यूहन्ना कहता है कि उन्होंने उसकी देह पर व्यंजन लगाया था जो लगभग 50 किलो रहा होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 40 पद में हम इसे पाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं लुका 23 अध्याय उसके 56 पद में। और लौट कर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सप्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। सप्त का दिन विश्राम का दिन होता था, इसलिए वे यीशु की कब्र नहीं गए। सुगंधित वस्तुओं का लेप वे पहले ही तैयार कर चुके थे। सप्त का दिन समाप्त होने पर जब वे यीशु की कब्र पर आए कि यीशु की लोथ पर सुगंधित वस्तुओं का विधिवत लेप करें, तो उसकी लोथ कब्र में नहीं थी। आपको ध्यान होगा कि जब यीशु शमौन फरीसी के घर भोजन पर बैठा था, अर्थात उसके घर पर था, तब एक स्त्री ने उसके पांव आंसुओं से धोकर उन पर कीमती इत्र डाला था। यही मरियम थी जो उसकी कब्र पर आई थी। मित्रों, यहां पर अध्याय 23 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 24 से जारी रखेंगे, और इसमें हम कुछ मुख्य विषयों पर ध्यान देंगे। यीशु क्यों कर कब्र में होता? वह जीवित हो गया था, इसका एक नहीं अनेक प्रमाण है। वह दो शिष्यों को इमाउस के मार्ग पर मिला, वह मरियम को वाटिका में दिखाई दिया, वह दो बार शिष्यों के कक्ष में गया, और अंत में अपने शिष्यों को एक महान दूत कार्य के लिए सौंप दिया, और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा देते हुए आशीर्वाद की मुद्रा में स्वर्ग में उठा लिया गया। हम देखेंगे यीशु जी उठा है, वह कब्र में नहीं है। लुकारचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। मैं उन स्त्रियों से यही पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उन सुगंधित पदार्थों का क्या किया। यूहन्ना 12 अध्याय उसके 5 पद में मरियम को झिड़का गया था कि वह ऐसा मूल्यवान इत्र क्यों व्यर्थ में गंवा रही है, अर्थात डाल रही है, जबकि उसका इत्र व्यर्थ नहीं गया था। मेरे विचार में वे आश्चर्य और उलझन में सब सुगंधित पदार्थ वहीं छोड़कर चली गई थी। हम लुका 24 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यहां पर हम फिर देखते हैं कि कब्र का पत्थर हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पत्थर इसलिए हटाया गया था कि वे स्त्रियां वहां प्रवेश कर पाए, इसलिए नहीं कि यीशु को बाहर निकालना है। आगे हम देखते हैं लुका 24 उसके 3 पद में, और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई, वह तो जा चुका था। हम लुका 24 उसके 4 पद से 8 पद में पढ़ते हैं, जब वे इस बात से भौंचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। मित्रों, यहाँ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ये स्त्रियां कब्र पर क्यों आई थी? पतरस और यूहन्ना क्यों दौड़कर कब्र में आए थे? वे मृतक यीशु को देखने आए थे, अर्थात उसे खोजने के लिए आए थे कि कहीं उसे कोई लेकर के तो नहीं चला गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि यीशु जीवित हो गया है। कुछ विचारकों के मत अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की सुबह वे वृत्तांतों में असंगत वर्णन है। सुसमाचारों के गहन अध्ययन से समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है। लूका यीशु की कब्र पर स्त्रियों के आगमन की चर्चा करता है और वहीं रुक जाता है, क्योंकि स्वर्गदूत ने उन्हें यीशु के शब्द स्मरण करवाए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सच्चाई को प्रत्यक्ष देखते हैं, सुनते हैं, परंतु विश्वास नहीं होता। आज परमेश्वर के वचन के बारे में भी मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। यीशु ने कई बार अपने शिष्यों से कहा कि वह यरूशलेम इसलिए जा रहा है कि वहां उसे घात किया जाए, परंतु वह तीसरे दिन फिर जी उठेगा। उन्होंने सुना तो अवश्य था, परंतु उस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि उन्हें स्मरण रहता। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ही बातें होती हैं। हम बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रचारकों को सुनते हैं, उनके द्वारा से संदेशों को सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस पर ध्यान नहीं देते, अर्थात उसे स्मरण नहीं करते हैं और उन्हीं कार्यों को करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। आज परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा मुझे और आपको भी इस बात का स्मरण दिलाया जा रहा है कि हमारा प्रभु सचमुच में उद्धार करता है। वह जी उठा है, वह आपके लिए और मेरे लिए मरा और आज वह जीवित है। और यह सच है कि वह आपसे और मुझसे आज भी वैसा ही प्रेम करता है जैसा वह पहले करता था। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम किस राह पर अपने जीवन को बिता रहे हैं। यदि आज हम सिर्फ नाम मात्र के लिए कलीसियाओं में जाते हैं, उसके जीवित वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए धिक्कार की बात है। आज मुझे और आपको एक सही निर्णय लेना है कि हम सचमुच में उसके वचन पर ध्यान दें, उसको माने और इतना ही नहीं उस पर विश्वास करें कि वह सचमुच में जीवित है, वह मुझसे प्रेम करता है, मेरे जीवन से प्रेम करता है, क्योंकि वह मेरे लिए ही क्रूस पर चढ़ाया गया है। शिष्यों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मुझे और आपको स्मरण दिलाया गया है। आइए आज हम अपने जीवन को और भी नजदीकी से देखें और प्रभु के समक्ष उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के प्रकाश में जांचें और देखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। मित्रों, हो सकता है कि आप वचन तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हो सकता है कि आप समझते हैं लेकिन उसके अनुसार आप चलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके अनुसार चलें। उसके लिए आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है और वह पवित्र आत्मा है जो आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। आइए आज के इस वचन में हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम किस राह पर हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने फिर से एक बार हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि कई बार हम आपके जीवित वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपके उन वायदों को भी हम स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अनुसार हम नहीं चल पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको क्षमा करें, अपने इस वचन के द्वारा हमसे अधिकाई से बातचीत करें, ताकि हम अपने आप को इस वचन के प्रकाश में डाल सकें, न केवल सुनने वाले बल्कि इसके अनुसार हम चलने वाले बन सकें। हम जानते हैं प्रभु कि हम निर्बल हैं, दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम अपने आप से सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के सहयोग के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके इस वचन को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में भी कार्य कीजिए, उन्हें सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि वे इस बात को जान सकें कि आपके द्वारा सब कुछ संभव है। आप उनकी सहायता कर सकते हैं, आप उन्हें मदद दे सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके साथ हो लीजिए, इस वचन की गहराई में उन्हें और अधिकाई से आगे बढ़ने में आप मदद कीजिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार हमारे उन भाई बहनों के लिए भी जो निराश, दुखी और बीमारी और तकलीफ में हैं। आपने उनसे भी बातचीत किया है, क्योंकि आप उनके लिए भी कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि वे भी अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से आज़ादी को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में इस समय निर्णय ले रहे हैं। पिताजी, आप उनकी सहायता करें ताकि वे आपके निकटता में रहकर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाए। इस समय फिर से एक बार सारी बातों के लिए हम आपको आदर मान और सम्मान देते हैं, विशेष करके आपके इस जीत वचन के लिए, इस समय के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।